ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं मनमोहक कार्यक्रमों की सुमधुर श्रृंखला।
आज हम प्रेमावतार श्री सत्य साई के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता सुनेंगे।
आज हम भजन शिक्षा प्रोग्राम के तहत देवी माँ का एक सुमधुर भजन सीखने के साथ ही साथ भगवान बाबा द्वारा मुंबई में दिए गए एक दिव्य संभाषण का एक भाग भी सुनेंगे।
तो चलिए कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हैं।
प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका स्वागत है। अब प्रस्तुत है सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य जीवन के अलौकिक प्रसंग। आज के प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं पुट्टपर्ती गांव के आसपास के मुस्लिम समुदाय को बाबा द्वारा वर्षों पूर्व पूजे गए पीर के चिन्हों को दोबारा उन्हें उपलब्ध कराने की अद्भुत कहानी, और इसी के साथ एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग सुनेंगे जिसमें स्वामी ने एक भक्त की बहन के रोग को बिना शल्य चिकित्सा के ठीक कर दिया। एक बड़ा ही आनंद भरा प्रसंग भी सुनेंगे जिसमें स्वामी कॉफी की खेती करने वाली एक महिला साकम्मा से कैलाश कमेटी के नाम से मिले और फिर उन्हें अपने प्रेम के बंधनों से भक्ति पथ पर मोड़ दिया।
इन्हीं दिनों बाबा से आसपास के मुस्लिम समुदाय ने अपने एक महत्वपूर्ण चिंताजनक मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। उनका समुदाय एक असाध्य विनाशक रोग से संघर्ष कर रहा था। इस क्षेत्र में मुहर्रम के माह में पीरों की पूजा परंपरागत रूप से की जाती थी। ये पीर के निशान पंजों की आकृति के होते हैं और ये पीतल अथवा अन्य धातुओं से बने होते हैं। इन पूजनीय पीरों को हसन और हुसैन की करबला के रण युद्ध की शहादत अर्थात बलिदान के पवित्र स्मृति चिन्हों के रूप में मानकर पूजा जाता है। इस अवसर पर रीति रिवाज अनुसार आराधना, समारोह, रैली और समारोह उपरांत विसर्जन आदि का आयोजन किया जाता था। ये कार्यक्रम हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही मिलकर करते थे। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा से संपर्क किया तो बाबा ने उन्हें बताया कि आपके गांव में पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक पीरों की पूजा की, परंतु कालांतर में ये प्रथा बंद हो गई। बाबा ने उन्हें ये पूजा निरंतर जारी रखने को कहा और उनके सामने एक रहस्य खोला कि उनके पूर्वजों ने जिन पीरों की पूजा की थी वे एक स्थान पर दबे हुए हैं। बाबा ने वो सटीक स्थान भी उन्हें बताकर कहा कि यहां खुदाई करने पर आपको वे पीर यहां मिल जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों ने बाबा के बताए स्थान पर खुदाई की और खोदते ही पीर वहां दिखाई देने लगे। प्रत्येक व्यक्ति बाबा के सर्वज्ञानी होने पर स्तब्ध और आश्चर्यचकित था और उन पवित्र चिन्हों के इस प्रकार प्रकट हो जाने पर कोई भी उन चिन्हों को बाहर निकाल लाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में बाबा स्वयं खुदाई किए हुए स्थल में उतर गए और उन पीरों को वहां से बाहर निकाल लाए। खुदाई में प्राप्त इन पंजों की आकृति के पवित्र पीरों की कुल संख्या 4 थी। इसके बाद कई वर्षों तक इन पीरों को स्वच्छ कर एक कपड़े में लपेटकर मंदिर में ही रखा जाता रहा। ये पीर ग्रामवासियों को मुहर्रम के समय आराधना हेतु प्रदान कर दिए जाते थे और उत्सव की समाप्ति उपरांत उन्हें भली भांति पुनः वापस मंदिर में पूर्वानुसार सुरक्षित रख दिया जाता था। एक बार तो ऐसा भी देखा गया कि जब मुस्लिम ग्रामवासी स्वयं बाबा के हाथों से उन पीरों को प्राप्त करके जा रहे थे, तब जिस व्यक्ति के हाथों में ये पवित्र पीर थे, वह व्यक्ति आवेशित सा हो गया, जैसे कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया है। सभी लोग उस झूमते से व्यक्ति के इर्द गिर्द गोल घेरे में खड़े हो गए। वो व्यक्ति झूमने लगा और गोले में घूमने लगा तथा पवित्र कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाने लगा। इसके बाद वो साईं बाबा के सम्मुख वापस जा पहुंचा। बाबा ने उससे कहा कि जाओ और त्योहार के बाद वापस आओ, और वो व्यक्ति उसी आनंदमयी मनोदशा में तेजी से परंतु शांति से चला गया। वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी घटनाओं और पलों को देखने का सौभाग्य मिला है, वे भी शायद कुछ सीमा तक ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। भला समुद्र के भीतर रहने वाली मछली अनंत आकाश के रहस्यों को कैसे समझ सकती है। दूर दूर से अनेक भक्त पुटपर्ती आने लगे। इस अद्भुत बालक के सर्वज्ञ होने, अंतर्यामी होने तथा अपार करुणावान होने के गुणों ने आगंतुकों को आकर्षित किया। इन भक्तों ने अन्यों को भी बुलाना शुरू किया। इस तरह बढ़ती संख्या में भक्तों की पुटपर्ती यात्रा आरंभ हुई। उडुमलय पेटे से भक्तों का एक समूह आया। सभी ने क्रमशः नमस्कार करते हुए बाबा को पुष्पमालाएं अर्पण की, किंतु बाबा ने एक भक्त की माला स्वीकार नहीं की। बाबा बोले, तुम्हें इच्छा नहीं थी, फिर दूसरों के आग्रह पर क्यों आए? सुनते ही चकित हो विश्वास की दृढ़ता बढ़ जाने से वह बाबा का चरण सेवक हो बैठा। मद्रास से एक अन्य महाशय पुटपर्ती पधारे थे। वो एक बार अपनी छोटी बहन को लेकर वेलूर के अस्पताल में गए। वहां के निपुण डॉक्टरों ने परीक्षा कर केवल शल चिकित्सा से ही उसके प्राण बचने संभव बताए। इनसे पहले बालिका बेंगलोर में बाबा के दर्शन पा चुकी थी। उनके आशीर्वाद के बिना डॉक्टरों के हाथ में अपने प्राण सौंप देना बालिका को स्वीकार न था। जब देखो तब कोई न कोई हट। इस प्रकार बहन को डांटते हुए महाशय बाबा के पास पुटपर्ती पहुंचे। तुरंत ही लौटने की आवश्यकता सूचित करते हुए प्रभु के चित्र से प्रार्थना की, किंतु बाबा ने सरस सत्य कथा प्रवचन में ही मग्न रहकर किंचित उत्तर न देते उस महाशय को अपने मंदिर में ही 7-8 दिनों तक ठहराए रखा। बहन अभी तक बची है या नहीं? उसकी शल्य क्रिया मेरी अनुपस्थिति में ही मेरे लौटने के समय की सीमा पार हो जाने के कारण उन डॉक्टरों ने कर दी होगी। बहन ने क्या सोचा होगा? इन विचार तरंगों में डूबकर वह अत्यंत व्याकुल हो गए। अचानक एक दिन प्रातः काल के समय उनको समीप बुलाकर बाबा ने कहा, जाओ, अब तुरंत ही जाओ, ये विभूति उसे दे दो। ऑपरेशन का विचार छोड़ दो, ये अपनी बहन से कहना। वे सज्जन वापस वेलूर पहुंचे। वेलूर जाने पर सब डॉक्टर मिलकर उनकी मनमानी पर टीका टिप्पणी करने लगे। शल्य क्रिया द्वारा अति भयानक रोग से बहन को बचाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला पुरुष अब कहता है, कोई एक महात्मा है, कोई गुरु है, आपने 10 दिन की देरी कर दी। इस प्रकार उन्हें डांट पड़ी। ऑपरेशन का विचार छोड़ दो, इस प्रकार बहन से कहो। बाबा के कहे इस वाक्य का अर्थ, शल्य क्रिया रहने दो, खतरे से मैं बचाऊंगा, यही है उसने सोचा। इसी कारण उसने उन सबसे क्षमा मांगी। अपना क्रोध शांत कीजिए, बीती हुई बात पर विषाद से क्या लाभ, वो मेरी ही गलती है। इस प्रकार हाथ जोड़, कुछ भी करिए, बहन को बचाइए, कहते हुए वे आर्त हुए। चिकित्सकों ने कहा, ठीक है। इस बीच में मरीज की परिस्थिति और कितनी अवगति को प्राप्त हुई है देखें। फिर उसको अलग कमरे में ले जाकर जब परीक्षण किया तो आश्चर्य, अपनी आंखों पर ही चिकित्सकों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या यह संभव है? सोच उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई। उस रोग के कोई चिन्ह ही नहीं थे मरीज में। शल्य क्रिया ही नहीं, औषध भी अब अनावश्यक थी। इस प्रकार यदि हरेक भक्त अपने प्रथम बार बाबा से मिलने के कारण और वे किस प्रकार बाबा के भक्त बने इसका वर्णन करें और उनका संग्रहण कर छपवाएं, तो निश्चित ही वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकता है। और ऐसी पुस्तक में श्रीमती साकम्मा का कथन अग्रस्थान पाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। दिवंगता साकम्मा कुर्ग प्रदेश की सुप्रसिद्ध कॉफी की बागवानी करने वाली थीं। परोपकार वृत्ति से युक्त वह देवी अत्यंत धनवान थीं। उनके दान धर्म की वृत्ति को देखकर मैसूर के महाराजा ने उनको धर्मपरायणी की गौरवपूर्ण पदवी प्रदान की थी। बाबा की दृष्टि में अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि चांदनी के समान जीवन से श्रांत लोगों को शांति पहुंचाती है। उनके विशाल हृदय के अनुग्रह का तेज सूर्य किरण के समान है। साकम्मा ने अपनी बाबा से मिलने की घटना का इस प्रकार वर्णन किया। एक दिन प्रातःकाल 9 बजे के समय सोवारपेट में अपनी कोठी के देवगृह में पूजा करते समय बाहर किसी के कार में आने की और उसी क्षण मुझसे मिलने की इच्छा से गड़बड़ मचाने की बात एक नौकर ने पूजा गृह में आकर सूचित की। ये कौन महानुभाव हैं, इस प्रकार गड़बड़ मचा रहे हैं? सोचती बड़बड़ाती कुछ गुस्से से ही मैं उठी और सामने के द्वार की ओर चल पड़ी। वहां एक पुरानी कार थी। ये कार इस पहाड़ी और जंगल को पार कर कैसे आई, मुझे आश्चर्य हुआ। उसका ड्राइवर केवल एक बालक, चारों ओर उड़ती उसकी केश राशि, कोमल शरीर, लगभग 15-16 वर्ष से भी कम आयु का लड़का, इसने कैसे लाइसेंस पाया होगा, मुझे विस्मय हुआ। उसको गाड़ी चलाने देने वाला उस कार का धनी कौन है, देखें तो। देखती हूं पिछली सीट पर मृग चर्म बिछाए हुए कट्टर धर्मावलंबी एक वृद्ध गंभीर व्यक्तित्व, भस्म से अंकित काया, तेजस्वी मुख, आजानु बाहु। कार के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में कैलाश कमिटी लिखा हुआ था। साकम्मा कहती हैं। साकम्मा कार के समीप पहुंची। आइए अंदर आइए, कहकर पिछली सीट पर बैठे महानुभाव को बुलाया। उनको एक पीढ़े पर बैठाकर वहीं स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाए हुए पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित कर नमस्कार किया। दूध फल आदि कुछ भी उस महात्मा ने स्वीकार नहीं किया। निश्चित समय के अतिरिक्त जब देखो तब जो मन में आया सो ग्रहण करना उन्होंने अनुचित बताया। उसको केवल जिह्वा की चंचलता बताया। उन्होंने इसी शब्द का उपयोग किया था, मुझे भली भांति याद है, ऐसा साकम्मा ने बताया। उन्होंने साकम्मा को कैलाश कमेटी का मेंबर बनने के लिए कहा। मेंबर बनने के लिए 1,000 रुपए की आवश्यकता सूचित की। साकम्मा ने सहर्ष अपनी सहमति दी। वे कहती हैं उनके पास एक कागज था जिस पर साकम्मा का नाम, पता, उनका मेंबर बनना और 1,000 रुपए देने की सम्मति आदि के विषय में पहले से ही लिखा हुआ था, केवल हस्ताक्षर करना ही शेष था। ठीक है, इतना कहकर वे अंदर के कमरे से 1,000 रुपए लेकर जब बाहर आईं, तब वे महात्मा, ये पत्र एवं रुपए अपने पास ही रहने दो, मैं पुनः आऊंगा, उसी समय ले जाऊंगा, कहकर शीघ्रता से सीढ़ी उतरकर कार में चढ़ गए। कोई संघर्ष या तकरार न करती गाड़ी उस बालक के चातुर्य से तुरंत चालू हो गई, घर घर धूल उड़ाती मुख्य द्वार पार कर गई, कुछ दूर जाकर अदृश्य हो गई। वर्षों बीत गए, पर वो कार का धनी या कैलाश कमेटी का पता ही नहीं चला। बेंगलोर में एक मित्र के घर में साकम्मा ने बाबा को जब प्रथम बार देखा, ओह, उस समय उस कैलाश कमेटी की कार चलाता हुआ बालक यही तो नहीं, ये संभावना मन में क्षण भर के लिए चमक कर विलीन हो गई। दूसरे ही क्षण अपने सामने दिखते बाबा, वो महातेजस्वी विभूतिधारी वृद्ध योगी ही हैं, यूं लगा। उनके मनोद्वेग को देखकर बाबा स्वयं उनके समीप आए। हां, 1,000 रुपए बाकी हैं आपके पास, ये धन कितने वर्षों से बाकी पड़ा है, यूं बाबा ने कहा। तब साकम्मा ने बाबा का दिव्यत्व पहचान कर नमस्कार किया और उस दिन से वे उनकी भक्त बन गईं। कहते हैं कि बाबा ने उस दिन वर्षों पूर्व घटित सब बातें, यहां तक कि गुलाब के फूल देने वाली बात भी वहां जमे जन समूह को बताई। जय साईं राम।
वास्तव में शिव शक्ति स्वरूप भगवान जब साई रूप में अवतार लेकर किसी भक्त से मिलने पहुंचेंगे, तो कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले प्रभु अपने सहज प्रेम और हास्य से कैलाश कमेटी के रूप में ही तो परिचय देंगे। भगवान के द्वारा दिए गए ये परिचय और लीलाएं भविष्य में संपूर्ण विश्व को कैलाशपति भगवान के सानिध्य और अनुग्रह की समिति के सदस्य बन जाने का आमंत्रण प्रतीत होता है। यद्यपि भगवान की लीलाओं के गूढ़ अर्थ साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता।
अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करेंगे। किरण जी भगवान बाबा के अनंतपुर स्थित महाविद्यालय संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं।
साईराम किरण जी और रेडियो साई में आपका बहुत स्वागत है।
साईराम करुणा,
आप हमें बताइए, 1969 में जब भगवान बाबा के बारे में उत्तर भारत में बहुत ही कम लोगों को मालूम था, आपको स्वामी के बारे में कैसे पता चला?
वास्तव में हम आगरा में थे जब हमारी यूनिट के आसपास, पिताजी एयरफोर्स में थे
जी,
वहां पर दूसरे यूनिट में भगवान के एक बाबा जी हैं, उनकी तस्वीरों से विभूति गिरा करती हैं।
अच्छा,
तो छोटे बच्चों में भी बात फैली और मैं शायद तब 5वीं कक्षा में थी या 6ठी कक्षा में थी, तो साइकिलों से हम जाकर वहां पर केवल अपने ये जो अचंबा था उसको देखने के संतोष को प्राप्त करने के लिए गए और देखा, बहुत अद्भुत लगा।
किसी के घर में हो रहा था?
किसी के घर में एक पूजा रूम था उनका, बहुत सी तस्वीरें लगी थी और सभी तस्वीरों से विभूति झरा करती थी। और जो भी उनके घर में आता था उन्हें वे साईराम करके स्वागत करते थे और छोटे छोटे विभूति के पैकेट दे दिया करते थे। हम भी उन पैकेटों को लेकर आए थे घर में, किसी ने कोई खास इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उसके लिए पहले विश्वास चाहिए।
हाँ, बिल्कुल।
किंतु बात आई गई हो गई और सब उसके बारे में भूल गए। किंतु पिताजी का जब प्रमोशन हुआ ऑफिसर के रूप में, तो हमें दूसरी जगह पर मकान मिला, ऑफिसर्स क्वार्टर्स। तब अचानक ही एक दिन वहां में पता चला कि हमारे सामने ही घर में एक सीतारामैया करके दूसरे ऑफिसर कहीं और से ट्रांसफर होकर आने वाले हैं। तो वहां पर ऐसा रिवाज था एयरफोर्स यूनिट्स में कि जब भी कोई ट्रांसफर होकर नया आसपास आता था तो उसको उसका स्वागत किया जाता था, और आसपास के पड़ोसी सब उन्हें घर में खाना खिलाया करते थे। कोई ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है तो कोई दोपहर के खाने के लिए, कोई रात के लिए, ताकि उन्हें थोड़ा समय अपनी रसोई वसोई
सेटअप
करने के लिए समय मिल जाए।
जी,
तो हमने भी उन्हें बुलाया, उन्हें खाना दिया आदि, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल उनके सामने था। पर बात आई गई होगी, धीरे धीरे हमने ये सुना कि उनके घर में भी विभूति इसी प्रकार से आती थी जो हमने पिछले साल सुनी थी। 1968 में हमें एक्चुअली जाकर साइक्लों पर इस चमत्कार का दर्शन किया था। अब वही चमत्कार बिल्कुल घर के सामने हुआ तो हमारे हृदय में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ।
Naturally.
तो हम यूं ही बच्चे यूं चले जाया करते थे और आंटी से कहते थे, और उन विभूति जो तस्वीरों से झड़ती थी उसमें बड़ी खुशबू हुआ करती थी, वो बड़ा स्वादिष्ट लगता था। तो हम यूं ही चले जाया करते थे और कभी सीतारामैया, मिसेस सीतारामैया ने हमें वापिस नहीं भेजा, हमेशा हमें प्यार से बुलाकर विभूति भी देती थी और छोटी छोटी कहानियां स्वामी के अनुभव अपने और दूसरों के भी सुनाया करती थी। तो हमारा आवागमन उनके घर में बहुत अधिक हो गया। फिर धीरे धीरे मेरी माँ भजन कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, नानी भी रखती थी, वो भी बहुत अच्छा गाती भी हैं, कंपोज भी करती हैं, अभी भी उनका बहुत स्वागत होता है, हर मंदिर में वो प्रोग्राम वगैरह देती रहती हैं। तो जब वीरवार के दिन उनके घर भजन हमने सुने, उनके घर से आवाज आई और बड़ा ही सरल भजन का तरीका और बड़ा ही डिसिप्लिन्ड, यू नो, अनुशासन में एक के बाद गाना और निश्चित समय में शुरू होकर निश्चित समय में समाप्त होना, फिर केवल विभूति का प्रसाद और कोई प्रसाद का झंझट नहीं, बड़ा ही अच्छा लगा। तो धीरे धीरे माँ भी हमारे साथ आने लगी भजन में। पर ये भजन केवल हमारा, हम बच्चों का, हम चार बहनें थी तब और सभी केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते थे और माँ का निश्चित आना शुरू हो गया।
पिताजी नहीं आते थे?
पिताजी का झुकाव थोड़ा सिख ही ख्याल में ज्यादा था।
अच्छा,
ऐसा था, हमारे जो परिवार के गुरु थे वो सिख थे
जी,
दादा तो हमारे हिंदू ही थे, और उन दिनों सामाजिक वातावरण भी ऐसा था कि सिखों और हिंदुओं में कोई विशेष अंतर नहीं माना जाता था। हिंदू गुरुद्वारों में जाया करते थे और सिख लोग भी हिंदुओं में
बिल्कुल
के मंदिरों में आया जाया करते थे, एक ही परिवार में दोनों ही मौजूद रहा करते थे। तो हमारे जो परिवार के सिख गुरु थे उन्होंने मेरे दादा से कहा था कि मुझे एक अपना पुत्र सिख ही के लिए दे दो। तो एक हमारे जो चाचा हैं वो बचपन से सरदार रहे।
अच्छा,
किंतु दूसरे चाचा हमारे दसवीं क्लास पढ़ते समय अपने एक दोस्त के प्रभाव में आकर उन्होंने भी सिखी स्वीकार करके सरदार होना स्वीकार किया। उनका विवाह भी सरदारों के घर में ही हुआ।
अच्छा,
तो पिताजी का भी झुकाव सिखी ख्यालों में था और सिख आपको पता ही है निराकार को मानते हैं पर गुरु को बहुत महत्व देते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह बाबा के बारे में सुना, हम लोग घर में चर्चा किया करते थे और हम प्रभाव डालने का प्रयास करते थे पिताजी भी आना शुरू करें। ऐसा होता था हमारे घर में जो शाम की आरती होती थी वो सब मिलकर किया करते थे और जो रात का खाना होता था डिनर वो भी साथ हुआ करता था। तो डिनर के टेबल पर ये चर्चा शुरू हो जाती थी और पिताजी को प्रभावित करने का प्रयास किया करते थे, पर पिताजी ने ना कभी हमें रोका और ना कभी कुछ विशेष उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो कुछ अरसे तक इस तरह चलता रहा। फिर अचानक ही हम बच्चों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम अपने पूजा घर में भी भगवान की फोटो रखें। तब हम साईं बाबा बुलाया करते थे या बाबा जी कहा करते थे स्वामी को। तो हमने आंटी को जाके अपनी प्रार्थना सुनाई, उन्होंने सनातन सारथी के पहले पृष्ठ से जो स्वामी के चित्र थे उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर हमें पकड़ा दिया, कहा कि ये रख लो।
अच्छा,
हमारे लिए वही बहुत था, बड़े प्रसन्न होकर हम आए और हमने अपनी पूजा करके ऑल्टर में उसको सेंटर में लगा दिया।
अच्छा,
पिताजी ने कुछ नहीं कहा पर उन्होंने अपनी गुरु नानक की फोटो जो हमने उठाई थी वापस रखकर अपनी पूजा की और फिर उन्होंने हमारी। तो इस प्रकार से ये जो
अरेंजमेंट बड़ा कन्वीनियंट था
सब अपने हिसाब से उसको रख लिया करते थे। फिर एक बार डिनर के टेबल पर ही बड़ा तर्क वितर्क शुरू हुआ और माँ को अपने ध्यान के समय में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो ही उनके कृष्ण हैं। अर्थात मेरी माँ जो कृष्ण पर अधिक जो छावर हुआ रहती करती ज्यादा भजन किया करती थी, उनको लगा या अनुभव हुआ कि वे ही कृष्ण हैं
स्वामी,
ऐसे मेडिटेशन में उन्हें लगा। तो उन्होंने भी पिताजी पर इम्प्रेस करने का बहुत प्रयास किया। तो पिताजी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे गुरु नानक के रूप में उनके दर्शन होने चाहिए, नहीं तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। उन दिनों वैसे ऐसा नहीं था कि बहुत से गुरु हुआ करते थे, समागम हुआ करते थे, ऐसा नहीं, बहुत रेयर होता था कि कोई गुरु है और इस प्रकार से लोग जाया करते हैं।
आजकल तो ऑलमोस्ट फैशन हो गया,
तो टीवी चैनल्स में बहुत से इस प्रकार से गुरु आया करते हैं, उनके सम्मेलन, उनके भाषण आदि आते हैं, ऐसा कुछ नहीं था तब। तो पिताजी के मन में कहीं कोई प्रेजुडिस या ऐसा भाव नहीं था, पर वो एक प्रकार से कोई तर्क के आधार पर कुछ कन्विंस होने का कुछ एक कारण चाहते थे। उन्होंने ऐसा ही अनुभव हमारी माँ को भी प्रकट किया।
शर्त लगी कि
जब तक उन्हें गुरु नानक के रूप में दर्शन नहीं हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकेंगे, हालांकि हमें रोकेंगे नहीं। तो ये फोटो का अदला बदली हुआ करती थी। तो तुरंत हमने दूसरे ही दिन देखा कि भगवान की, मतलब उससे पहले ही वास्तव में भगवान की फोटो के ऊपर से विभूति और अमृत का प्रदर्शन हुआ था
आपके घर में,
हमारे घर में। वो छोटे से जो फोटो
प्लास्टिक के छिलके में थी,
जो प्लास्टिक के कवर के बीच में छोटी सी फोटो में थी उनके ऊपर। तो जब पिताजी ने इस प्रकार से तर्क देकर एक प्रकार से चैलेंज ही भगवान को दिया, तो उस दिन दूसरे ही दिन सुबह जब माँ ध्यान में बैठी, माँ का यह अभ्यास था कि सुबह 4-5 बजे उठकर ध्यान करती थी, तो उन्हें एक भीनी भीनी खुशबू का एहसास हुआ। उठकर उन्होंने लाइट जलाकर देखा तो उन्होंने पाया कि गुरु नानक की जो छोटी फोटो हमारे पास थी उसमें अमृत का प्रवाह है। तो तुरंत उन्होंने पिताजी को उठाया और पिताजी के लिए शायद और कोई नया चमत्कार आवश्यक नहीं लगा, उन्होंने तुरंत माथा टेक कर उन्हें अपना गुरु नानक मान लिया। तो इस प्रकार से पूरा परिवार ही साई परिवार से जुड़ गया।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के महाविद्यालय के अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत सुश्री किरण बाला अरोड़ा जी के अनुभवों का पहला भाग प्रस्तुत किया गया। उनसे वार्तालाप कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। ये भेंट वार्ता 25 मई सन 2012 में रिकॉर्ड की गई थी।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी।
भगवान बाबा द्वारा 23 जनवरी सन 1983 को मुंबई में एक अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का दूसरा भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
ప్రపంచంలో చక్కగా విచారించిన భగవంతుని కంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఒక దివ్యత్వం మరొకటి లేదు।
संसार में सचमुच देखा जाए तो भगवान को देखने, भगवान को समझने से बढ़कर जीवन का कोई अधिक ध्येय नहीं।
मणुलु दारमुलो चेर्चिनट्टुगा जगत्तुनंतकुडनु ई भगवत् अनेटुवंटि सूत्रमुलो कुच्चबडिनटुवंटिदि।
जैसे हम धागे में सब कुछ पिरो लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के सूत्र में सब कुछ पिरोया हुआ है।
अयिते मणुलु यंदुन्नटुवंटि दारम ए विधंगा कनिपिंचदु, अदे विधंगाने व्यक्ति यंदुन्नटुवंटि दैवत्वं कूडानु आ विधंगा अव्यक्तमै उंटुंटादि।
जिस प्रकार धागा दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर की जो दिव्यता है वो भी बाहर दिखाई नहीं पड़ती है।
मानवुनि यॊक्क हृदयमु अगाधमैन समुद्रं वंटिदि।
मानव का हृदय दिल है, एक बहुत बड़ा सागर है।
ई समुद्रमनंदु आणिमुत्यमुनु उंटुन्नवि, कानी मानवुनकु अपकारं चेसेटुवंटि तिमिंगलमुलु मृगमुलु कूडानु उंटुन्नवि।
इस सागर में अच्छे अच्छे मोती भी हैं चमकदार, और साथ साथ एक ऐसे भयंकर जानवर हैं तिमी तिमिंगल जैसे।
మానవుని యందు హృదయము నందు కూడాను సత్య పవిత్ర త్యాగ కరుణ దాన ఇలాంటి సద్గుణములనేటువంటి ముత్యములు ఉంటున్నవి, కాని రాగ ద్వేష అసూయ డంబము అనేటువంటి మానవునికి అపకారం గావించేటువంటి మృగములు కూడా ఉంటున్నవి.
ఇసి ప్రకార మానవ కే హృదయమే భీ సత్య హై దయా హై కరుణా హై ఆది అచ్చి అచ్చి భావనాయే హై, ఇస్కే సాథ్ సాథ్ రాగ ద్వేష ఈర్ష్యా దంభ ఆది బురే గుణతీ హై.
ఈనాటి మానవుడు ఈ విధమైనటువంటి అపకారమైనటువంటి రాగ ద్వేషములను ఎప్పుడు అరికట్టును ఆనాడే దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవించుటకు అధికారి అవుతాడు.
జబ్ ఆత్మీ అప్నే అందరికే రాగ ద్వేష కి పంకిల్ భావన కో కాబూ మే లాతా హై తభీ వో దివ్యత కే లియే యోగ్య బన్ జాతా హై.
ప్రతి మానవుని యొక్క హృదయ క్షేత్రమునందు కూడాను ప్రేమ రసం ప్రవసరించునే ఉంటున్నది.
ప్రత్యేక వ్యక్తి కే అందర్ జో చేతనా హై వో ప్రేమ సే భరీ హుయీ హై.
భూమి లోపల జలము సర్వత్రా ప్రసరిస్తూనే ఉన్నది, ప్రవహించుచునే ఉన్నది.
మిట్టీ మే హర్ జగా పానీ బహతా హీ రహతా హై.
అయితే మనకును ఆ జలమునకును మధ్యనున్న మట్టిని తీసివేసినప్పుడే మనకు ఆ జలం కనిపిస్తుంది.
లేకిన్ పానీ ఔర్ హమారే బీచ్ మే జో మిట్టీ హై ఉస్కో జబ్ తక్ హమ్ నహీ నికాలెంగే తబ్ తక్ పానీ బాహర్ నహీ నికాలెంగే.
అదే విధముగానే దైవత్వమునకు జీవత్వమునకు రాగద్వేషం మట్టి చేరటం చేతని ఆ దైవత్వం మనకు మరుగ్గా ఉంటున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది.
ఇసీ ప్రకార జీవాత్మ ఔర్ పరమాత్మ కే బీచ్ మే రాగ ద్వేష కే జో పరతే హై వో హమ్కో భగవాన్ సే అలగ్ కర్ రహీ హై.
జీవునకు దేవునకు మధ్యన ఉన్నటువంటి ఈ రాగద్వేషం అనేటువంటి మట్టిని మన హృదయ క్షేత్రం నుంచి ఏనాడు దూరం చేతుమో ఆనాడే సాక్షాత్కారం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది.
జీవాత్మకో పరమాత్మ సే అలగ్ కర్నే వాలి రాగద్వేష కి మిట్టీ కో జబ్ తక్ హమ్ నహీ హటాయేంగే తబ్ తక్ హమారే హృదయ మే దివ్య భావన పైదా నహీ హోతీ హై.
మానవుడు మొట్టమొదట అహమేవ భక్తః అంటాడు, నేనే భక్తుడను అంటాడు.
మానవ సబ్సే పహలే కహతా హై కేవల్ మై భక్త హూ.
కానీ కొంతకాలము సాధనల చేతను విచారణ చేతను కొంతవరకు సత్యమును గుర్తించి అహం చ భక్తః అంటాడు, నేను కూడా భక్తుడనే అంటాడు.
కొద్ది సమయకే బాద్ ఓ సచ్చాయికో పహచాన్తా హై ఔర్ కహతా హై కేవల్ మై భక్త నహీ హూ మై భీ భక్త హూ.
మరి మూడవ స్థాయి ఎందుకున్నది, అహం న భక్తః అంటాడు, నేను భక్తుని కాదు అంటాడు.
తీసరి అవస్థ మే ఆత్మీ కహతా హై కి మై భక్త నహీ
హూ. అనగా భక్తి యొక్క లక్షణములు చక్కగా గుర్తించుకుని కేవలము ఆడంబరమైనటువంటి దానికి స్వస్తి చెప్పి హృదయ స్థాయిలో ప్రేమతత్వంతో అనుభవించేటువంటి స్థితిని తాను చేకూర్చుకుంటాడు.
ధీరే ధీరే ఓ భక్తి కే లక్షణం కో హృదయంగం కర్ లేతా హై ఆడంబర్ సే దూర్ హో జాతా హై దంభ కి భావన మిట్ జాతీ హై హృదయ నిర్మల్ బన్ జాతా హై.
కనుక ఈ మూడింటి యొక్క లక్షణములు ఎందుకు కూడాను మనం చక్కగా విచారిస్తే మనం ఎవరు భక్తులము అని చెప్పుటకు అధికారం లేదు.
అగర్ ఇన్ తీన్ అవస్థాఓ కో హమ్ ధ్యాన్ సే దేఖే తో లగతా హై కి హమ్ లోగం మే సే కోయి భీ భక్త
నహీ. అహం అహం అనేటువంటి యొక్క శబ్దము మూడు స్థాయి ఎందు సంచరిస్తూ మూడు పేర్లతో ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నది.
అహం కి జో భావన అహం కా జో శబ్ద హై తీన్ అవస్థాఓ మే అలగ్ అలగ్ రూపం మే అప్నే ఆప్కో ప్రకట్ కర్ రహా హై.
మొట్టమొదట అహంకారము, ఈ దేహమునందు చేరినటువంటి అహం తత్వం అనేటువంటి దాని కేవలము సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని ఇది చిత్తము చిత్తము అనేటువంటి పేరుతో ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నది.
సబ్సే పహలే అహం కి భావన జబ్ పైదా హో జాతీ హై హమ్ కై తరహ కే రిష్తే నాతే జోడ్ లేతే హై ఔర్ హమ్ సమజ్తే హై కి యే మై హూ.
స్థూల దేహమునందు కలిగినటువంటి ఒక అహం తత్వమునకు చిత్తము అని పేరు.
స్థూల శరీర మే జో అహం కి భావన పైదా హో జాతీ హై ఉసే కో చిత్ కి సంజ్ఞా దీ జాతీ హై.
సూక్ష్మ దేహమునందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక అహం తత్వమునకు మనసు అని పేరు.
యహీ సూక్ష్మ శరీర మే జబ్ పైదా హోతీ హై ఉస్కో మన్ కి సంజ్ఞా దీ జాతీ హై.
కారణ దేహమునందు ప్రవేశించినటువంటి అహం తత్వమునకు బుద్ధి అని పేరు.
ఔర్ కారణ శరీర మే జో అహం కి భావన పైదా హో జాతీ హై ఉసే కో బుద్ధి కహా జాతా హై.
కనుక ఒకే అహం అనేటువంటిది అనేక స్థాయిల్లో అనేక రూపములో అనేక పేర్లతో ప్రకటిస్తూ వస్తున్నది.
ఇస్ ప్రకార్ అహం కి ఏక్మాత్ర భావన కభీ చిత్ కభీ మన్ కభీ బుద్ధి బన్కర్ అలగ్ అలగ్ రూప్ మే ప్రకట్ హోతీ
హై. బట్టా అని మనం చెప్తున్నాము,
ఇసీ కో కపడా కహతే హై.
కానీ ఇది బట్ట కాక పురము దారము అని పిలువబడుతుంది.
జబ్ యే కపడా నహీ బనా థా ఉస్తే పహలే ఇస్కా నామ్ థా ధాగా.
ఈ దారము కాక పురము ప్రత్తి అని పిలువబడుతుంది.
జబ్ ధాగా భీ నహీ థా ఉస్ వక్త్ ఇస్కా నామ్ థా కపాస్.
కనుక ఆకారమును ధరించినటువంటిది ఇది బట్ట, ఇది చిత్తము అనేటువంటిది.
జబ్ ఇస్కా కోయి ఆకార్ సూరత్ బన్ జాతీ హై తభీ ఇస్కా నామ్ కపడా హో గయా.
ఇది సూక్ష్మరూపమైనటువంటి యొక్క దీనిని ధరించినప్పుడు ఇదే దారము అనేటువంటి దీంట్లో మనస్సు అని పేరుతో పొందుతుంది.
జబ్ ఏ సూక్ష్మ రూప్ మే రహతా హై తబ్ ఉస్కా ధాగే కే రూప్ మే మన్ కి సంజ్ఞా పాతా హై.
ఈ రెండింటికి ఆధారమైనటువంటిది ప్రత్తి.
ఇన్ దోనం కా ఆధార్ హై కపాస్.
కనుకని బుద్ధి అనేటువంటి ప్రత్యే లేకుండినా మనస్సు అనేటువంటి దారము చేయుటకు వీలు కాదు. మనస్సు అనేటువంటి దారమే లేకుండా ఇంకా చిత్తము అనేటువంటి బట్టను తయారు చేయలేము.
జబ్ బుద్ధి నామ్ కే ఏక్ వాస్ నహీ రహతీ హై తబ్ మన్ రూపీ ధాగా నహీ బన్తా హై. జబ్ మన్ రూపీ ధాగా నహీ హై తో చిత్త రూపీ కపడా భీ నహీ హోతా.
అయితే ప్రత్తి యందు దారమునందు ఒక బట్ట యందు ఉండేటువంటి పదార్థం ఒక్కటే.
కపడే మే ధాగే మే ఏక్ హీ తత్వ హై.
కనుక స్థూల దేహం నందు సూక్ష్మ దేహం నందు కారణ దేహం నందు ఉండేటువంటి యొక్క అహం అనేటువంటి బ్రహ్మతత్వం ఒక్కటే.
ఇసీ ప్రకార స్థూల శరీర సూక్ష్మ శరీర ఔర్ కారణ శరీర మే ఏకీ తత్వ హై అహం కి భావన.
కనుక బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది సర్వులు ఎందు కూడా ఏకత్వంగానే ఉంటుండాలి.
బ్రహ్మకి జో భావన హై సబ్ మే బరాబర్ హై.
ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని మనము సాధన రూపంలో లేక ఒక విధమైనటువంటి ఆచరణ రూపంలో మనము అనుభవించినప్పుడే ఆధ్యాత్మిక సత్యము మనకు అర్థమవుతుంది.
జబ్ ఇస్ ప్రకార్ కి ఏకతా కో హమ్ మానసిక పరిప్రేక్ష్య మే పాతే హై తభీ హమ్ ఆధ్యాత్మికత కా అనుభవ కర్ సక్తే హై.
కాలము అద్దము వంటిది.
కాల్ శిష్య కే సమాన్ హై.
మనము చేసేటువంటి సర్వ కర్మలను కూడాను ఈ కాలం అనేటువంటి దాంట్లో ప్రతిబింబిస్తూ వస్తుండాలి.
హమ్ జో కుచ్ కర్తే హై వో సబ్ కాల్ రూపీ శిష్యమే ప్రతిబింబిత్ హోతే హై.
కనుకనే కాలకాల ప్రబన్నానాం కాలక్రిమ్న కరిష్యతి అని కాలమును మనం అనేక విధములుగా అపవిత్రం చేస్తున్నాం.
హమ్ కాల్ కా అనేక ప్రకార సే దురుపయోగ కర్ రహే హై.
ప్రేమ స్వరూపులారా, ధనము ఖర్చు పెడితే ఖర్చు అవుతుంది.
పైసా ఖర్చు కియా జాతా హై తభీ ఖర్చు హోతా హై.
లేక నశిచ్చితే తిరిగి మనం సంపాదించుకోవచ్చును.
అగర్ నష్ట హోతా హై తో ఫిర్ ఉస్కో కమా సక్తే హై.
ఆరోగ్యము చెడిపోతే తిరిగి మనం పోషించుకోవచ్చును.
అగర్ స్వాస్థ్య తందరుస్తి ఖరాబ్ హో గయి తో ఫిర్ తందరుస్త్ బన్ సక్తే హై.
ఆయువే పోతే మనం సాధించుకోలేము.
ఆయు జబ్ సమాప్త్ హో జాయే తో ఫిర్ ఉస్కో నహీ పా సక్తే.
ధనము ఖర్చు పెట్టినప్పుడే ఖర్చు అవుతుంది.
పైసా జబ్ ఖర్చు కియా జాతా హై తభీ వో ఖర్చు హోతా హై.
లేకుండా అది ఖర్చు కాదు.
నహీ తో ఉస్కా ఖర్చా నహీ.
కానీ ఆయు అట్లు కాదు.
లేకిన్ ఆయు ఇస్ ప్రకార్
నీవు ఖర్చు పెట్టినా పెట్టకపోయినా క్షణ క్షణమునకు నువ్వు ఆయు కరిగిపోతున్నది.
చాహే ఆప్ ఇస్కో ఖర్చు కరే యా నహీ పల్ పల్ మే వో ఘట్ జాతీ హై.
ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించి పవిత్రమైన కాలమును మనం సద్వినియోగం చేసుకున్నట్టుకై తగిన ప్రయత్నం చేయాలి.
హమే ఈ సచ్చాయి కో పహచానా చాహీ ఔర్ సబ్సే మూల్యవాన్ ఆయు కా సదుపయోగ్ కర్నా చాహీ.
కాలమును మనం దుర్వినియోగం చేయకూడదు.
సమయ కా దురుపయోగ్ నహీ కర్నా చాహీ.
ఇలాంటి కాలమును దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు మనం దుష్టత్వాన్ని పొందటం తప్పదు.
జబ్ హమ్ సమయ కా దురుపయోగ్ కర్తే హై తో హమారే అందర్ దుర్భావన అవశ్య పైదా హో జాతీ హై.
కనుక కాలమును పవిత్రము చేసే నిమిత్తమై కాయం మనకు ప్రాప్తించినది.
సమయ కో పవిత్ర బనానే కే లియే హమ్కో శరీర్ మిలా హై.
కాయము ద్వారా కర్మలను ఆచరించి సార్థకతనుందాలి.
శరీర్ కే ద్వారా హమ్ కర్మ కా ఆచరణ కరే ఔర్ జీవన్ కో సార్థక్ కరే.
అభీ ఆప్ సున్ రహే థే అవతార్ వాణీ.
ఆజ్ ఆప్నే భగవాన్ బాబా ద్వారా ముంబై మే దియే గయే ఏక్ దివ్య సంభాషణ్ కా దూసరా భాగ్ సునా. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा.
कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी.
श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने देवी माँ की आराधना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी, शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी, श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी, तांडव केली प्रियकरी भैरवी प्रलयंकरी सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक भी कहते हैं।
श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी।
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 शंकरी अभयंकरी शुभं 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 करी साईश्वरी।
श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी।
श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी।
तांडव केली प्रिय करी भैरवी प्रलयं करी।
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 सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी।
सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी।
सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी।
सर्वेश्वरी सुंदरी दया करी महेश्वरी। श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी।
दादरा ताल और राग मलय मारुतम पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन के प्रायः सभी शब्द देवी माँ के विभिन्न नाम रूपों की स्तुतियां हैं और वे दो शब्दों के संयोग से बने हैं। भजन का पहला शब्द दो शब्दों श्री और करी से मिलकर बना है। ये प्रत्यय में प्रयुक्त शब्द करी लगभग हर शब्द में संयुक्त है, जिसका अर्थ यहाँ पर है करने वाली या प्रदान करने वाली। श्री का मतलब यहाँ धनैश्वर्य से है, तो श्री करी से तात्पर्य हुआ वे जो हमें धन धान्य से संपन्न करती हैं। कृपा करी से अभिप्राय है कृपा करने वाली। आइए यहाँ पर थोड़ा इस कृपा शब्द को विस्तार से समझा जाए। भगवान बाबा कहते हैं कि मेरी अनुकंपा या कृपा तो सदैव तुम्हारे ऊपर है। ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कि आदान प्रदान किया जा सके। कृपा तो सदैव बनी रहती है और चेतना जो इसके महत्व को समझती है उसे प्राप्त करती है। अपने भीतर स्थित सूक्ष्म चैतन्य शक्ति की कृपा अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमें भगवान की कृपा की अनुभूति जो सदैव उपस्थित है होती है। भगवान किसी को भी अपने से दूर नहीं करते, हम ही भगवान को अपनाते नहीं हैं। जब भगवान हमें उपहार देते हैं तो हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपने हाथों को भगवान की तरफ बढ़ाना है उसे प्राप्त करने के लिए। वही कृपा है, सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता से परख कर हमें भगवान की कृपा की महत्ता के पाठ को समझकर उसे हासिल करना है। मेरे असीमित प्रेम के द्वारा मेरी कृपा वृष्टि सदैव ही तुम पर होती रहती है, भले ही तुम्हारी सूक्ष्म चेतना शक्ति उससे लाभान्वित होने के लिए उसे ग्रहण कर पाए या ना कर पाए। इस कृपा के माध्यम से तुम्हें आस्था और विश्वास, ज्ञान और परमानंद प्राप्त हो जाएगा। क्षेमंकरी का अर्थ है हमारा भला करने वाली। साईश्वरी मतलब साई माँ। एक बार कुछ लोग अमरनाथ जी के दर्शन करने अमरनाथ धाम तक की यात्रा पर निकले, जिसमें से श्री रामन्ना, श्रीमती सुशीला और उनकी बेटी श्रीवल्ली को मिलाकर एक साई बाबा के श्रद्धालुओं का परिवार भी था। जब वे बर्फानी बाबा के दर्शनार्थ चढ़ाई के क्रम में अपने अंतिम पड़ाव पर थे, तभी श्रीवल्ली को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो बेहोश हो गई। सहयात्रीगण उनके पास इकट्ठे तो हो गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ लोगों ने तो श्रीवल्ली के ही माता पिता को कोसना शुरू कर दिया कि उन्हें छोटी बच्ची के साथ इतनी दुर्गम यात्रा पर नहीं आना चाहिए था। श्रीवल्ली के माता पिता भी अवाक खड़े थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि तभी लाल साड़ी पहने, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए एक महिला उनके पास आई। उनके हाथों में कुछ जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने माता पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, इन पत्तों के रस को निचोड़कर बेटी को पिला दीजिए। सशंकित माता पिता ने और कोई उपाय न होने की स्थिति में इस अजीबोगरीब परामर्श का अनुपालन किया। पत्तों का रस मुख में पड़ने के कुछ ही समय बाद श्रीवल्ली को होश आ गया और उसकी स्थिति बेहतर हो गई। बाकी के लोग अपनी यात्रा में आगे निकल गए, लेकिन इस साई भक्त परिवार ने उस महिला को धन्यवाद किया और नीचे अपने अस्थायी आवास होटल में आ गए। वहां पर डॉक्टर ने जांच की और कहा कि अब उनकी बेटी की अवस्था सामान्य हो गई है। शाम तक दूसरे यात्रीगण भी उस होटल में लौटकर आ गए। उनमें से एक यात्री ने उन्हें बताया कि उसने यात्रा के दौरान कुछ तस्वीरें खींची थी। उसने उस महिला की भी तस्वीर ली थी जब वो पत्तों का रस डालने के लिए दे रही थी, परंतु जब उसने तस्वीर में देखा तो वहां उस महिला के स्थान पर कोई अजीब सा पुरुष खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि महिला की जगह इस तस्वीर में पुरुष कैसे आ गया। श्री रामन्ना जी और उनकी पत्नी ने उस फोटो को देखा तो वे दंग रह गए। वो पुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बाबा ही थे जो पत्तियां दे रहे थे। उन्हें भगवान का ये श्री वचन याद आ गया, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, जब मैं हूं तो डर काहे का। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान को सही समय आकर उनकी रक्षा करने के लिए सहस्रों बार हृदय पूर्वक धन्यवाद किया। तो ये था क्षेमंकरी साईश्वरी के भावार्थ हेतु एक सटीक उदाहरण। इस घटना को अभयंकरी अर्थात जो हमें हर प्रकार के भय से निर्भय कर दें, और शुभंकरी अर्थात जो हमारा सदैव भला ही करती हैं, ऐसी साईमा के संबंध में भी देखा जा सकता है।
तांडव केली प्रिय करी भैरवि प्रलयं करी।
तांडव केली प्रिय करी से तात्पर्य है वे जिन्हें तांडव नृत्य की केली मतलब क्रीड़ा या कला पसंद हो, वे भैरवी जो प्रलयंकरी अर्थात प्रलय करने वाली भी हैं। आमतौर पे इन चीजों तांडव नृत्य और प्रलय के विध्वंस से भगवान शंकर का संबंध है, परंतु चूंकि वे अर्धनारीश्वर हैं इसीलिए माता पार्वती को भी ये कलाएं प्राप्त हैं। इस लाइन के दो अन्य शब्द शंकरी और भैरवी दोनों ही का तात्पर्य माता पार्वती जी से है। चलिए यहां पर थोड़ा माता भैरवी के नाम रूप को समझने का प्रयास करते हैं। भैरव की पत्नी को भैरवी कहा जाता है और भैरव भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। भैरव भगवान शंकर का रुद्र रूप है और भैरवी देवी मां का रुद्र रूप है। पुराणों के अनुसार जब मां भैरवी रण क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तब उनका भीषण रौद्र रूप दानवों को दुर्बल और भयभीत कर देता है। इसका गूढ़ार्थ है कि देवी मां हमारे अंदर निहित विकारों और दुर्गुणों को जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं, उजागर कर हमें इस मलिनता से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे हमारे भीतर पाप भीति उत्पन्न करती हैं, जो दिव्य प्रेम का लक्षण है। हमने भी अनेकों बार भगवान बाबा को रुद्र रूप में देखा है, जो उनके अंदर हमारे लिए व्याप्त असीमित प्रेम के कारण ही था। वे कभी कभी हमारे उपकार के लिए ही रुद्र रूप धारण कर लेते थे। इस संबंध में डॉक्टर श्री शिवशंकर साई जी जो वर्तमान में भगवान के विश्वविद्यालय में प्राख्याता हैं और लगभग एक दशक तक पुट्टपर्ती के श्री सत्यसाई वरिष्ठ विद्यार्थी छात्रावास में वार्डन थे, उनका एक अनुभव स्मरण में आता है। अपने विद्यार्थी जीवन में जब वे भगवान बाबा के बेंगलुरु स्थित वृंदावन आश्रम के महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब एक दिन भगवान ने देखा कि वहां के छात्र नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वे नाराज होकर वृंदावन छोड़कर प्रशांति निलयम चले गए। सभी छात्र बहुत दुखी हुए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उस समय के वार्डन सर ने कड़े शब्दों में सभी को डांट लगाते हुए कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सब भगवान के सानिध्य से स्वयं को सदैव के लिए वंचित पाएंगे। सभी बच्चे मन ही मन स्वामी से निरंतर प्रार्थना करने लग गए और भजनों के दौरान अक्सर भावुक हो उठते थे। एक सप्ताह बाद उन्हें भगवान के द्वारा प्रेम से लबालब भरा हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ। बाबा ने लिखा था, बच्चों मैं यहां आ तो गया लेकिन तुम लोगों को भुला नहीं पा रहा हूं। तुम सब मुझे बहुत ही प्रिय हो। भले ही रूठ कर मैं वहां से चला आया लेकिन तुम लोग दुखी मत हो। ऐसा मैंने तुम्हारे ही भले के लिए किया था ताकि तुम लोगों में अनुशासन आए मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे बच्चे बनो, ईश्वर के बच्चे कहला सको, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस पत्र ने विद्यार्थियों के दिल को छू लिया। इसीलिए जब भी भगवान हमसे नाराज होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे ऐसा भी केवल हमारी रक्षा और कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
श्री करी कृपा करी क्षेम करी साईश्वरी श्री करी कृपा करी क्षेम करी साईश्वरी शंकरिया भयंकरी शुभंकरी साईश्वरी शंकरिया भयंकरी शुभंकरी साईश्वरी श्री करी कृपा करी क्षेमं करी साईश्वरी
के साथ। हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साई राम।
आज का हमारा साई प्रेमवाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपने सुझाव एवं परामर्श ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 और एक बार 9393258258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि रेडियो साई हिंदी एक ही शब्द है और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। इन कार्यक्रमों को आप अपने मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। ये सोच के तोड़ दी तस्बीह हमने कि किन किन के क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है, ऐसा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा तन मन धन अपनी हर श्वास समर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय साईं राम।